ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 12 श्लोक नंबर 3 श्लोक नंबर 3। मुझे क्लास 9:45 बजे तक खत्म करना है, तो मैं सोच रहा था हम सीधा शब्द अर्थ में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जूरी विषय की मीटिंग है 8:30 बजे से। हाँ, शब्द अर्थ
तस्मात् अतः प्रक्षामि,
है वो
कहूंगा पश्चात
बाद में, अधुना
इस समय सुबोधम सरलता से समझ में आ जाने वाला बोधगम्य अध्यात्मजोग आत्म साक्षात्कार योग शिक्षा का ग्रथितम रचित तब तुम्हारी उक्तम बाणी वचन आख्या ही पुनः विस्तार से समझाइए। कौतूहल चेतस ऐसे उत्कंठा से पूर्ण कथनों के मर्म को समझने के लिए जिसका मन अत्यंत उत्सुक है, मैं मुझको अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो उपदेश दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है, कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं भली भांति समझ लेना चाहता हूँ। दोहरा, यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उसके संबंध में बाद में आपसे पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो उपदेश दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है, कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं भली भांति समझ लेना चाहता हूं। तात्पर्य, वैदिक साहित्य का उपदेश है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बुद्धिमान व्यक्ति को दिव्य विज्ञान जानने के लिए परम उत्सुक जिज्ञासु होना चाहिए, इसके लिए उसे गुरु के निकट जाना चाहिए। यद्यपि जड़ भरत ने महाराज रहुगण को प्रत्येक वस्तु विस्तार से समझा दी थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बुद्धि उसे समझने में सक्षम न थी, अतः उसने आगे विवेचना के लिए प्रार्थना की। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विद्यार्थी को चाहिए कि गुरु के निकट पहुंचकर पूर्ण समर्पण कर दे, प्रणिपातेन उसे चाहिए कि उनके उपदेश समझने के लिए वह प्रश्न भी पूछे, परिप्रश्नेन उसे चाहिए कि गुरु को न केवल समर्पण करे वरन उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करे, सेवया, जिससे गुरु प्रसन्न होकर उसे दिव्य विषय को ठीक से समझा दें। यदि कोई वैदिक उपदेशों को गंभीरता से सीखना चाहता है तो गुरु से स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए,
ओम ज्ञानतनंदस्य ज्ञानंजनाशलक्य चक्षुरुन्मीलितं श्रीचैतन्यमनोव्यस्तं सर्वतामेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं दास जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये श्लोक का उच्चारण महाराज रहुगुना कर रहे हैं और कल के श्लोक में महाराज रहुगुना ने कहा कि मेरा जो हृदय है गंदे भावों से भरा हुआ है। दूसरे शब्दों में हमारा जो हृदय है अनेक अनर्थ के कारण भगवान के शरणागत नहीं होना चाहता। तो महाराज रघुनंदन ने कहा कि मेरा जो हृदय है वो गंदे भावों से भरा हुआ है। ये गंदे भावों का अर्थ है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का प्रभाव, जिसे आप सरल भाषा में अनर्था बुलाते हो। और इन अनर्था के कारण हम भगवान के शरणागत होना नहीं चाहते। तो जद भारत ने कहा कि मेरे हृदय है वो मैल है गंदा है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारा जो हृदय है कोले से भी ज्यादा काला है। आप अंदाजा लगाओ कोला कितना काला है, तो कोले से भी ज्यादा काला, क्योंकि हमारे हृदय में अनेक प्रकार के भौतिक विचार हैं और इस कारण हम अहंकार घमंड में आ जाते हैं। इस कारण हम भगवान के शरणागत नहीं होते। और उन्होंने आगे कहा कि मैं इस वक्त आई एम डिजीज्ड, मैं इस वक्त बीमार हूं। आप किसी से पूछो कैसे हो, हाउ आर यू, तो क्या उत्तर में मिलता है, सारुच है, हाँ ठीक हो। तो सारे विश्व में ये रिवाज है, जब कोई पूछे आप कैसे हो तो उत्तर मिलता है ठीक हो। पर महान रोग ना कह रहे हैं मैं बीमार रोगी व्यक्ति हूं। रोगी इस दृष्टि से क्योंकि मन में अनेक भौतिक विचार हैं। तो हम सब असल में रोगी हैं। हम कहते हैं कि हम ठीक हैं पर हम सब रोगी हैं, क्योंकि हमारे हृदय में अनेक प्रकार के भौतिक विचार हैं। और आगे उन्होंने कहा आपका जो उपदेश है यही एक औषधि है इस बीमारी के लिए। दूसरे शब्दों में हमारी असली बीमारी क्या है, भौतिक आकर्षण, जो कि हम अनुभव करते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के द्वारा। और अगर हम इन अनर्थ से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या है उपाय, क्या है औषधि, भगवान के दिव्य नामों का श्रवणम और कीर्तनम। यही भाव कई श्लोकों में प्रस्तुत किया गया है कि भगवान के जो दिव्य नाम हैं वही एक औषधि है हर समस्या के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपका जो आध्यात्मिक उपदेश है दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, ये एक ही उपाय है इस समस्या से मुक्त होने के लिए। और उन्होंने उदाहरण दिया जिस प्रकार गर्मी के मौसम में बारिश आ जाए तो गर्मी कम हो जाती है, तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि आपका जो दिव्य उपदेश है इससे हमारी समस्या बुखार भौतिक आकर्षण जो है कम हो जाएगा। आगे आज के श्लोक में रघुनाथ क्या विचार प्रकट कर रहे हैं, आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जो भी शंकाएं थी मेरे हृदय में वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। वैसे तो रघुनाथ ने अनेक प्रश्न पूछ लिए हैं और इस अध्याय में और अगले अध्याय में और प्रश्न पूछेंगे। तो कह रहे हैं अभी जो मेरे हृदय में जो शंकाएं हैं, तो अगर हमारे हृदय में शंका हो, जिज्ञासा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए भगवान के प्रमाणिक भक्तों से इन प्रश्नों का उत्तर। गीता में आप देखते हो कि अर्जुन ने अनेक प्रश्न पूछे भगवान से, है कि नहीं? ये नहीं कि प्रश्न पूछना कुछ दोष है, पर हमें प्रश्न उस भाव से पूछना चाहिए कि हम इसके उत्तर को स्वीकार करने को तैयार हैं। आप डॉक्टर के पास जाओ, कहो ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, डॉक्टर साहब आपको दवाई देते हैं, इलाज देते हैं, आपको ये दवाई इलाज परहेज नहीं चाहिए, तो डॉक्टर पर जाने का फायदा है। तो इसी प्रकार प्रश्न पूछने का लाभ जब है, जब हम उस उपदेश का लाभ उठाने को तैयार हैं या पालन करने को तैयार हैं। इस विषय में रूप गोस्वामी जी ने श्री उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है, दाती प्रतिगृहनाति गुह्य मकति प्रचति भुनक्ते भुजते चैव सद्विधिं प्रीति लक्षणम्। कि भक्तों के छह प्रकार के संबंध होते हैं। एक है जो मन की जिज्ञासा है वो आप प्रकट करो, ये नहीं कि मन में, कई बार क्या होता है आप देखते हो कि हम भक्ति में हैं पर माया का प्रभाव इतना तेजी से आ रहा है और हम किसी से कुछ पूछते नहीं, हम सारे भावों को अपने मन में ही रखते हैं। और कई बार देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में हम भक्ति से जुदा हो जाते हैं। इसलिए जब हमारे मन में किसी प्रकार की शंका हो तो हमें पूछ लेना चाहिए उनके उत्तर के लिए जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो। तो रूप गोस्वामी कहते हैं छह प्रकार के संबंध, रिवील योर माइंड टू दोज हु आर मोर एडवांस, टेक इंस्ट्रक्शंस, उनका मन उनके भावों को सुनाओ जो आपसे एडवांस हैं, उनकी शिक्षा दो, फिर प्रसाद दो और प्रसाद स्वीकार करो, आगे दान दो और दान लो। हम दान में देते हैं ज्ञान ग्रंथ इत्यादि और बदले में हम दान देते हैं इन ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, हम प्रसाद खिलाते हैं प्रसाद खाते हैं। तो यहां देख रहे हो कि महाराज रघुनाथ आत्मज्ञानी व्यक्ति है, राजा थे पर और उनके पास दिव्य ज्ञान था, पर वो जत भारत से अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एक भाव जो उन्होंने प्रकट किया है वो ये है कि मेरे मन में और जिज्ञासा है और प्रश्नों का उत्तर चाहिए मुझे, पर मैं ये प्रश्न पूछूंगा कब, थोड़ी देर के बाद। इस समय आपने जो दिव्य ज्ञान दिया है वो मुझे ठीक समझ नहीं आ रहा। आप अगले अध्याय में भी पढ़ोगे कि महाराज रघुनाथ कहेंगे आपने जो ज्ञान दिया है उसका मैं आभारी हूं, पर मुझे पूरा समझ नहीं आया, तो फिर से समझाइए। एक रूप से भगवद गीता का जो उपदेश है आप चार पांच श्लोकों में समाप्त कर सकते हो, पर भगवान ने बड़ी गहराई के साथ अलग अलग रूपों से दिव्य संदेश दिया है हमें। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत महाराज रघुनाथ उपदेश ग्रहण कर रहे हैं जत भारत के द्वारा, पर जत भारत बड़ी गहराई के साथ उपदेश दे रहे हैं, रघुनाथ के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ठीक समझें। तो कभी आपको लगता हो कि अगर हम ये स्वीकार करें कि हमें पूरा समझ नहीं आया तो लोग हंसेंगे, इसमें हंसने की कोई बात नहीं। यहां आप देख रहे हो कि महाराज रोगुना कह रहे हैं, मेरे अनेक और प्रश्न हैं तो वो मैं बाद में पूछूंगा, पर अभी तक जो आपने मुझे उपदेश दिया है वो मुझे पूरा समझ नहीं आ रहा, तो मुझे और गहराई से समझाइए। तो कह रहे प्लीज रिपीट देम इन अ सिंपल वे, तो कह रहे हैं आप कृपा करके वही उपदेश फिर से मुझे सुनाओ। रोगना कह रहे हैं फिर से सुनाओ मुझे वो उपदेश। इसलिए हालांकि हमें पता है कि कृष्ण भगवान परम भगवान है, हमें पता है कि भक्ति योगी एक साधन है, हमें पता है हरि नाम की महिमा, हमें पता है गीता मां भागवत की महिमा, जब भी शास्त्र में संतों ने कहा है कि हमें नियमित रूप से रोज निरंतर ये उपदेश सुनना चाहिए। नस्तापरेषु अवधेषु नित्यं भगवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भावती नहीं सकी। कभी कभी हम भक्त आलसी हो जाते हैं, हम क्लास का समय है और हम आश्रम में विश्राम कर रहे हैं, पूछो क्या कर रहे हो, हम टॉयलेट जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हमें क्लास सुनना चाहिए, क्लास क्यों नहीं सुनते? हम सोचते हैं हमें सब पता है, यही बोलना है उन्होंने, कृष्ण भगवान परम भगवान है, भक्ति करो, हरि नाम करो, माया से बचो, हमें तो सब पता है। नहीं, नियमित रूप से रोज सुनोगे तो इसका असर पड़ेगा। यहां आप देख रहे हो कि महाराज रोगुना वो कह रहे हैं अब फिर से मुझे समझाओ। फिर से समझाना मतलब रोज सुनना, रोज जब आप क्लास सुनते हो तो आप फिर से समझ रहे हो क्या है भगवान का उपदेश। और माया का प्रभाव इतना तेज है कि अगर हम रोज नहीं सुनेंगे तो बड़ी सरलता के साथ माया के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। इस भक्ति प्रभुपाद जी की कृपा से, संतों की कृपा से हमारे पास पूरा हथियार है जिसके द्वारा हम माया का विरोध कर सकते हो। केवल ये आवश्यक है कि हम इन सुविधाओं का लाभ उठाएं, उपयोग करें। तो महाराज रोगुना कह रहे हैं कि आपने जो उपदेश दिया है वो मुझे पूरा समझ नहीं आया, थोड़ा समझ आया है पर पूरा नहीं, तो आप कृपा करके उसे ज्यादा सरलता से सिखाइए। कह रहे ज्यादा सरल शब्दों में हमें उपदेश दीजिए। मेरा जो मन है बड़ा जिज्ञासु है और मैं इसे ध्यान पूर्वक समझना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी ने इतना प्रयास करके इन ग्रंथों का अनुवाद किया। आपके हरे कृष्ण लैंड जू में प्रभुपाद जी रहते थे और सारे विश्व में जब यात्रा करते थे, रोज नियमित रूप से 5-6 घंटे रात को ग्रंथों का अनुवाद करते थे। क्यों? क्योंकि उनके उनकी इच्छा थी कि अगर यह भगवान का शुद्ध संदेश सरल शब्दों में प्रस्तुत किया जाएगा तो लोग इसे स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद जी अपने सामने प्रीवियस आचार्य जो हमारे आचार्य हुए हैं उनके तात्पर्य को सामने रखते थे, उनके तात्पर्य को लेकर जो अवश्य भाव थे उन्हें सरल शब्दों में प्रस्तुत करके उन्होंने हमें ये तात्पर्य दिए हैं कि और प्रभुपाद जी ने सरलता से प्रस्तुत किया है कि हम समझ सके। तो जन भारत से निवेदन किया जा रहा है रोगुना के द्वारा कि आपने जो उपदेश दिया है वो मुझे थोड़ा सा समझ आया है, और गहराई के साथ और सरलता के साथ मुझे समझाइए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य का उपदेश क्या है। वैदिक साहित्य का उद्देश्य यह है कि गुरु के शरणागत होना चाहिए, और गुरु के शरणागत होना चाहिए और गुरु के माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता, हम तो सारा संदेश व्यास देव जी से प्राप्त कर रहे हैं, हम तो केवल व्यास देव को ही गुरु मानते हैं। तो शास्त्र में कहा गया है तद विधि प्राणिपतेना प्राणिपतेना सेवया उपदेशना देते ज्ञानम ज्ञानेनम तत्पर दर्शना, कि अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो प्रमाणिक गुरु के शरणागत होना चाहिए। और प्रमाणिक गुरु के विषय में श्री उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी जी कहते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार उपस्थ वेगम। वो व्यक्ति गुरु बन सकता है जिसने मन बुद्धि इंद्रियों पर वश किया हो। और गुरु का कर्तव्य क्या बनता है, वही भगवान का संदेश प्रस्तुत करे जो कि परंपरा द्वारा आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा देते हुए कहा सनातन गोस्वामी से, पहले कदम में हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, दूसरे कदम में सेवा करनी चाहिए, तीसरे कदम में दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, चौथे कदम में पूछना चाहिए मुझे क्या त्यागना चाहिए भगवत प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए। जैसे कि जब आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर साहब से दवाई भी लेते हो और परहेज भी लेते हो। डॉक्टर साहब कहते हैं ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, ये मत करो ये मत करो ये मत करो, है कि नहीं? तो आप कहते हो हाँ ये छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये मेरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आजकल कईयों को डायबिटीज की बीमारी है, तो लोगों को रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने का बड़ा शौक है। जब जो डायबिटीज हो जाए तो छोड़ना पड़ता ही है ना, नहीं छोड़ोगे तो दवाई का कुछ असर ही नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा केवल दीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा। अगर हम सोचेंगे अभी तो हमने दीक्षा ले ली बस, कई बार लोग ऐसे सोचते हैं, इसके लिए आप इस्कॉन में भी देखते हो कई बार भक्त दीक्षा से पहले बड़े उत्साहित होते हैं, दीक्षा के बाद ढीला हो जाते हैं। उल्टा होना चाहिए। तो क्यों वो सोचते अभी दीक्षा हो गई अब बस सब जो चाहिए था मिल गया, दीक्षा के बाद सेवा करो, पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और अगर कुछ त्यागना पड़े तो उसे त्यागो। इस विषय में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय मित्र, जो कीमत भी भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो गुरु ग्रहण करने का लाभ जब है जब हम गुरु की शिक्षा के आधार पर चलने को तैयार हैं। और जो गुरु की शिक्षा है ये 100% निर्भर है साधु और शास्त्र के अनुसार। शास्त्र का अर्थ भगवान की वाणी। उदाहरण के लिए जो उपदेश और शिक्षा श्री प्रभुपाद जी ने हमें दिया है 100% निर्भर है किस पर, शास्त्र पर। 100% पर 100% निर्भर है शास्त्र के आधार पर। आप कहां भी एक शब्द नहीं ढूंढोगे जो कि शास्त्र के शिक्षा से स्वतंत्र है। फिर साधु, साधु से क्या अर्थ, जो हमारे महात्मा हैं जो परंपरा में आ रहे हैं, साधु वही कहते हैं जो शास्त्र में है। और गुरु आगे वही कहता है जो कि साधु ने कहा हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा मेरी आज्ञा से तुम सब गुरु बनो, कहा ना हमारे आज्ञा। और उसका अर्थ क्या है, आप सब भगवान के संदेश का प्रचार करो। और कैसे, जो आप सुनते हो उसी को आगे सुना दो। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रमाणिक गुरु के शरणागत होना चाहिए और उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हो और गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, ये नहीं चैलेंजिंग एटीट्यूड जैसे प्रभा जी कहते हैं, अ चैलेंजिंग स्पिरिट बिफोर द स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी अवॉइडेड इफ वन इज एट ऑल इंटरेस्टेड इन लर्निंग द वैदिक लिटरेचर. इस भावना से नहीं, अभी तो हमने दीक्षा ले ली हम चैलेंज करेंगे, नहीं, विनम्रता के भाव से हमें इस उपदेश को स्वीकार करना चाहिए. चैतन्य चरितमृत में आप कथा पढ़ते हो चैतन्य महाप्रभु जी की और रामचंद्रपुरी की और माधवेंद्रपुरी की. एक समय चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में पहुंचे, वहां मायावती संतों की सभा चल रही थी, उनके गुरु का नाम था प्रकाश नंद सरस्वती. अभी आया कितना देर, ओके, तो मेरे लिए कोई वेट कर रहा है. तो प्रकाश ये जो सभा चल रही थी वहां मायावती सन्यासियों को पता था कि चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हैं, तो वो आलोचना कर रहे थे, देखो इतना बड़ा विद्वान है संस्कृत का, छोटी आयु में ही प्रसिद्ध पंडित बन गए थे और पागलों जैसे नाच रहे और गा रहे. जैसे हम लोग जब हरिनाम में जाते हो कई लोग की आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, चलो आ गए भगवान का नाम सुनाने के लिए, कई लोग आपकी निंदा करते हैं. उस दिन पिछले साल जब रथ यात्रा हो रही थी, हम रथ में पीछे चल रहे थे, कई मोटर वाले कह रहे क्या है ये तुम रथ यात्रा कर रहे हो, इतना ट्रैफिक जैम बना दिया तुमने. हमने कहा ट्रैफिक जैम हुआ है क्योंकि लोग भगवान का संदेश सुन रहे हैं. तो कई बार लोग कहते हैं हरी नाम न्यूसेंस वैल्यू. जब हम हरे कृष्ण लैंड में भी प्रभुपाद जी आए थे तो उस समय यहां कई किराएदार थे, कई क्रिश्चियन किराएदार भी थे, कईयों ने इसका विरोध किया और कई पड़ोसी कहने लगे हरे कृष्ण आर क्रिएटिंग न्यूसेंस, हरे कृष्ण ये हरे कृष्ण मंत्र करते हैं दिस इज न्यूसेंस. तो कई लोग सोचते हैं ये हरी नाम जो है न्यूसेंस है. तो चैतन्य महाप्रभु से कहा गया था कि आप इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हो, क्या है ये पागल जैसे नाच रहे हो गा रहे हो. महाप्रभु ने कहा मेरे गुरु ने देखा और निर्णय किया कि मैं मूर्ख हूं, मेरे में ज्यादा योग्यता नहीं है, मेरे में केवल यह हरे कृष्ण मंत्र लेने की योग्यता है, इसलिए मैं केवल यह हरि नाम ले रहा हूं. तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उदाहरण दिया इसे, किस विनम्रता के साथ शिष्य का भाव होना चाहिए. आगे रामचंद्रपुरी जो थे बकायदा संतों की पहले सेवा करते थे, जबरदस्ती उन्हें महाप्रसाद जगन्नाथ जी का खिलाते थे, और जब सन्यासी लोग कहते थे नहीं नहीं हमने तो बहुत खा लिया भाई इतना मत खिलाओ, सन्यासियों को कम खाना चाहिए, फिर वो कहते थे महाप्रसाद का अपराध कर रहे हो, ये महाप्रसाद है आप इनकार कर रहे हो खाने से. जो खा लेते थे क्या कहते थे, देखो सन्यासी बन गए और खाते हैं गृहस्थ से भी ज्यादा. तो इसमें उनको बड़ा आनंद आता था. इसी प्रकार एक समय वो गए चैतन्य महाप्रभु के कमरे में, गर्मी का मौसम था, चीटियां चल रही थी फर्श में, लकड़ी की फर्श थी. तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया हाँ ये सन्यासी ने मीठा खाया होगा, वो मीठा गिर गया है तो चीटियां आ रही हैं. तो कहने लगे लगता है हमारे सन्यासी को मीठा मीठी चीजों का बहुत शौक है. तो महाप्रभु तो इतने गंभीर सन्यासी थे, महाप्रभु ने कहा जिस प्रकार एक सफेद चादर में एक काला दाग का निशाना दूर से भी दिख जाता है, अगर किसी सन्यासी में किसी प्रकार की कमी हो तो लोग उसे आदर नहीं देंगे. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बड़े सीरियस गंभीर सन्यासी थे। तो महाप्रभु ने कुछ तुरंत खाना ही बंद कर दिया। लगभग उनके शिष्यों को इतना क्रोध आ रहा था कि इस रामचंद्र पुरी की आलोचना के कारण महाप्रभु ने भोजन खाना भी कम कर दिया। तो एक समय ये रामचंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु के गुरु भाई थे। उनके गुरु का नाम था ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई थे रामचंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी एक समय अपने गुरु को उपदेश देने लगे। मानचंद्रपुरी उनके गुरु उस समय के सबसे ऊंचे भक्त थे। तो मानचंद्रपुरी विनम्रता से भाव प्रकट कर रहे थे कि मेरा जीवन व्यस्त हो गया, मैंने कुछ राधा कृष्ण का प्रेम नहीं स्वीकार किया। तो ये अपने गुरु को उपदेश देने लगे, आप ब्रह्मांड का चिंतन क्यों नहीं करते। गुरु इतना क्रोधित हुआ कि उन्होंने कहा तुम निकल जाओ मेरे नजरों से, क्योंकि तुम्हें देखते हुए अगर श्री त्यागना पड़े तो जीवन मेरा बेकार हो जाएगा। और इसकी तुलना में ईश्वरपुरी जो थे उन्होंने बड़ी विनम्रता से गुरु की सेवा की। उनको कंधे में उठाते थे बुढ़ी उम्र में, उनके मल पेशाब को साफ करते थे। और मानचंद्रपुरी इतने प्रसन्न थे शिष्य की सेवा से कि उन्होंने कहा आशीर्वाद दी कि तुम सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करोगे, जो कि उन्होंने किया चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद और संतों के माध्यम से। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण है कि हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। और प्रमाणिक गुरु का जो उपदेश है वो 100 शास्त्र पर आधारित है, और अगर हम इस उपदेश का पालन करेंगे तो भक्ति के मार्ग में आगे हम बढ़ सकेंगे। तो यहां रहुगुना जद भारत को उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। शुरू में तो जद भारत को जोड़ा था पलकी उठाने के लिए। शुरू में तो उन्होंने सोचा ये तो गुंगर भैरा व्यक्ति है, ये तो मूर्ख है, क्योंकि जद भारत का व्यवहार समाज में ऐसा था जैसे वो गूंगे हैं और बहरे हैं। पर जब उन्होंने उनका उपदेश सुना तो समझ गए क्या, अरे ये तो आत्मज्ञानी है, मैंने क्या अपराध कर दिया है, मैंने इस आत्मज्ञानी व्यक्ति को डांटा चिल्लाया ताने मारे उसका अपराध किया। तो तुरंत वो पलके से नीचे उठे और उनके प्रणाम करते हुए उनके शरणागत हुए, उनसे माफी मांगी अपराधों के लिए। तो अगर हम कभी अपराध कर भी लें तो हमें तुरंत ही प्रणाम करके उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये नहीं कि अपराध करो और अब करते जाओ, क्योंकि वैष्णव अपराध से भक्ति जो है नष्ट हो जाती है। तो संक्षेप में आज के इस महत्वपूर्ण श्लोक में जो महाराज रघुनाथ कह रहे हैं, जो भी शंकाएं हैं मेरे हृदय में, जो भी शंकाएं हैं वो मैं पूछूंगा पर बाद में पूछूंगा। वैसे तो उन्होंने अनेक प्रश्न पूछ लिए हैं, पर कह रहे हैं और जो शंकाएं हैं ये बाद में पूछूंगा। इस समय के लिए जो उपदेश आपने दिया है आत्म साक्षात्कार के लिए, जो गुरु का उपदेश है वो राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं, वो रहता है किस लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो आत्म साक्षात्कार के लिए जो उपदेश मैंने दिया है ये वो मुझे समझने के लिए बड़ा कठिन है। तो अगर आपको कभी लगे कि संदेश बड़ा कठिन है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। महाराज रघुनाथ को भी जद भारत का संदेश किया शुरू में जरा कठिन लग रहा था, पर एक रूप से महाराज रघुनाथ ये भाव प्रकट कर रहे हैं हमारे भलाई के लिए, हमें जरा यह हौसला दें कि अगर हमें कठिन लगता है तो ये आश्चर्य की बात नहीं। तो वो कह रहे हैं कि इधर कठिन है समझने के लिए तो आप कृपा करके उन्हें दुराइए फिर से। तो हम ये भगवान का जो संदेश है बार बार हमें सुनना चाहिए, और बार बार सुनोगे तो ही ये हमारे हृदय में पहुंचेगा। अगर हम सोचे कि एक बार सुन लिया, पापा जी जब बॉम्बे में थे एक समय उन्होंने कहा आई रीड माई गीता माई सेल्फ एवरी डे, तो प्रभुपाद जी ने गीता का अनुवाद किया। जब वो रोज पढ़ते थे भगवद गीता, क्यों? क्योंकि हमें उदाहरण देने के लिए कि रोज हम पढ़ेंगे ग्रंथों को तो इन ग्रंथों का जो संदेश है हृदय में बैठेगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए एक बार भगवद गीता पढ़ ली तो पूरा संदेश हमें पता होने लगे। हमें बार बार पढ़ना चाहिए गीता भगवतम, और गीता भगवतम को बार बार पढ़ोगे बार बार सुनोगे तो फिर ये संदेश हमारे हृदय में बैठेगा। और अगर हम सोचेंगे कि एक बार सुनने से ही बैठ गया तो वो कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन संस्था की स्थापना की उन्होंने हाथ से लिखा, अपने हाथ से, एवरी डे डिवोटी मस्ट अटेंड भागवतम क्लास इन द मॉर्निंग एंड गीता क्लास इन द इवनिंग। रोज सुबह हमें यह भगवत का उपदेश सुनना चाहिए। तो चाहे अगर कोई बड़ी महत्वपूर्ण सेवा हो तो हम गीता भगवतम क्लास से बच सकते हैं, नहीं तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम उत्साह के साथ सुने। श्रवणम और कीर्तनम, श्रवणम का अर्थ है सुनना, कीर्तनम का अर्थ है उच्चारण करना, और जितने ध्यान से सुनोगे उतनी तेजी के साथ ही हृदय की जो मैल है दूर होगी। तो जब भारत बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं, और जब भारत के उपदेश में और व्यासदेव के उपदेश में कोई अंतर नहीं, हमें इस उपदेश का लाभ उठाना चाहिए भौतिक आकर्षण से बचने के लिए। और भौतिक आकर्षण सदा रहेगा पर हमें सदा इन हथियारों का उपयोग करना है। भगवान स्वयं कहते हैं देवी ऐश गुणमाई मामा माया दुर्वतया, इस माया का विरोध करना बड़ा कठिन है। मम में मामे प्रपद्यं दे माया मितांतरं दिले, और जो मेरी शरण में आता है वो इसका विरोध कर सकता है। तो भगवान की शरण में आने का अर्थ है श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाना, और शरणम कीर्तनम का लाभ उठाओगे तो माया के प्रभाव से बच सकोगे। हरे कृष्णा। एक प्रश्न है तो ले लूंगा, फिर मुझे वकीलों से मीटिंग है अभी। एनी क्वेश्चंस? हाँ, यस, हाँ, नो क्वेश्चन, यस, क्विकली,
यस गुरु महाराज,
ओनली आई एम ओनली टेकिंग वन क्वेश्चन, यस।
हाँ महाराज, आज के श्लोक में आपने बताया गुरु के लक्षण वाचो वेगम मनस क्रोध, तो जो शिक्षा गुरु जो ये है उनके भी वही लक्षण होने चाहिए, इज इज सपोज टू बी?
हाँ, जो शिक्षा दे उसमें भी लक्षण तो होने चाहिए। ये नहीं कि शिक्षा गुरु में भी, शिक्षा गुरु का भी उदाहरण अनेक शिक्षक गुरु हमारे होते हैं, खास करके इस्कॉन में कई लेवल के शिक्षक गुरु हैं, और शिक्षक गुरु मतलब जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, और उनमें भी पवित्रता का लक्षण होना चाहिए। अगर वो स्वयं इन नियमों का पालन नहीं करे तो क्या शिक्षा देंगे? ओके, मैं जा भी क्लास को। एनी मोर क्वेश्चन? यस, लास्ट क्वेश्चन
महाराज। हरे कृष्णा। मेरा हृदय में शंका है इसलिए मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी पूछूं बाद में पूछूं? एक और श्रवणम कीर्तन करने से हृदय की बीमारी, भौतिक आशाएं की बीमारी जरूर कम होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो फिर से बीमारी आता है। कभी कभी क्या है, डॉक्टर पेशेंट का रिश्तेदार को बोलता है अगर दोबारा ये पेशेंट को बीमारी आता है उसको अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं, उसने घर में लेके जाइए। हमारा हालत वैसा होता है कि वो इसलिए मुझे सरल रीति से आप समझाइए।
समझ गया आपका प्रश्न। तो इसका उत्तर यह है कि अगर हम निरंतर शरणम कीर्तनम करते जाएंगे तो माया आपको नहीं छुएगी। जैसे मान लो आप एक सूटकेस के साथ अंधेरी स्टेशन में खड़े हो, अगर आप ध्यान से सूटकेस की तरफ नजर रख रहे हो हमेशा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो अब एक मिनट की भी आंखें दूसरी तरफ जाएंगे कोई तो आप अगर नियमित रूप से साधना भक्ति का पालन करोगे, भजन क्रिया का पालन करोगे, तो माया आपको छुएगी नहीं, माया आपसे डर जाएगी। माया कहेगी अब मेरा कार्य असफल हुआ, आई एम अनसक्सेसफुल। ओके ओके सॉरी आई हैव टू गो, देयर इज अ मीटिंग। हरे कृष्णा।